بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور مسئلہ فدق ہم تحقیقی انداز میں دیکھ رہے تھے. ہم نے فدق کا موضوع ہبہ کے عنوان سے ملاحظہ کیا, کتب احادیث کو دیکھا, کتب تواریخ کو دیکھا. اسی طرح سے ہم نے اس کا جائزہ کتب جرح و تعدیل و علم رجال کے زائل میں کیا. پانچ دلیلیں ہمارے پاس کتب احادیث میں جو روایت وارد ہوئی ہے, مسند ابی اعلیٰ ہیں, امام حاکم ہیں, البزار ہیں, سیوطی, کنز المال میں متقی ہندی یا دیگر بزرگان, ان میں سے جو کتب احادیث میں روایات ہیں, کیونکہ بعض تو ہیں جیسے انصاب الاشراف بلاذوری کی ہے, فتوح البلدان ہے, الطبقات ہے ابن سعد کی, ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. یہ مجموعہ بن جاتا ہے تاریخ کی کتب ہیں, رجال کی کتب ہیں, کتب تاریخ و سیر کی. ہم اس کی طرف ابھی نہیں آئے کیونکہ اس میں الگ سندوں سے یہی ہبہ کرنے والی روایت موجود ہے. ہم ابھی کتب احادیث میں جیسے مسند ابی اعلیٰ معروف کتاب ہے, ان کی زندگی چوتھی صدی ہجری میں بسر ہوئی ہے اور چوتھی صدی ہجری میں وفات ہے ان کی, اور تیسری صدی ہجری میں ان کی زندگی اپنی بسر ہوئی ہے. محدثین کے دور کے ہیں ابو یعلیٰ الموصلی اور بہت بزرگ شخصیت ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق جناب فاطمہ علیہ السلام کو ہبہ کر دیا. اس حدیث کی سند میں عطیہ عوفی پائے جاتے ہیں. عطیہ عوفی کا ہم نے پھر تفصیلی جائزہ لیا اور ہمارے پاس پانچ دلیلیں اس حوالے سے آئیں. پانچ دلیلیں, ہم پانچویں دلیل کو پڑھ رہے تھے اور آج کتب احادیث میں ہم دوسری سند کی طرف آ جائیں گے, کیونکہ بنیادی دو ہی سندیں ہیں. یعنی ایک اکثریت, اکثر جو یہ روایت آئی ہے اس میں عطیہ عوفی سے ہی ابو سعید خدری سے لی گئی ہے, لہذا عطیہ عوفی ایک, اس میں بعض نے اس کے اوپر اعتراض کیا. پانچ دلیلیں عطیہ عوفی کی وثاقت کے اوپر کیا ہیں؟ پہلی ہمارے پاس دلیل یہ تھی کہ اکابر علماء جرح و تعدیل نے ثقہ قرار دیا ہے, یہ پہلی دلیل عطیہ عوفی پہ. جیسے ابن معین نے کہا صالحن, عجلی نے کہا جو تیسری صدی ہجری کے ہیں, عجلی بہت بڑی شخصیت ہے, ثقتن. ابن سعد نے کہا ثقتن انشاءاللہ, اور کہا کہ لہ الاحادیث صالحہ, اور طبری نے بھی اسی طرح سے کہا ثقتن. اچھا, اس کے بعد ہم آ جائیں ابن حجر عسقلانی صدوقن یخطی کثیرن, صدوق انہوں نے قبول کیا صدوقن. اس طرح سے ہم نے اقوال جوڑے. یا حنفی علماء کی طرف آ جائیں تو ملا علی قاری نے کہا من اجلاء التابعین, یا اسی طرح سے اور بعض حنفی علماء ہیں انہوں نے دلیل قائم کی روایت نقل کرنے کے بعد, یہ باقاعدہ دلیل قائم کی کہ یہاں اس سند میں عطیہ عوفی ہیں اور ابن معین یحییٰ بن معین نے کہا ہے صالحون, پس وہو حسن, یہ حدیث کیا ہے؟ حسن درجہ کی مقبول حدیث ہے. بس یہ پہلا ہمارا استدلال ہو گیا کہ اکابر علماء جرح و تعدیل نے کیا کہا ہے, ثقہ. دوسری دلیل ہے کہ جو جرح جنہوں نے کی ہے, جیسے احمد بن حنبل نے تدلیس کا الزام لگایا, امام نسائی نے کہا ضعیف, ابو حاتم نے کہا ضعیف یکتب حدیث, ہو ضعیف ہے لیکن حدیثیں لکھی جائیں گی, ابن عدی کا بھی اسی طرح سے جملہ ہے. لیکن یہ ساری جرح مبہم ہیں کیونکہ احمد بن حنبل وہ کس سے لے رہے ہیں؟ قلبی سے, محمد بن صاحب قلبی سے, اور محمد بن صاحب قلبی شیعہ سنی دونوں میں متروک ہے, اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی. اور جرح مبہم ہو تو وہ تعدیل کے اوپر اور وثاقت کے اوپر مقدم نہیں کی جاتی, یہ دوسری دلیل تھی ہمارے پاس. تیسری دلیل یہ ہے, ترمذی ہیں, امام حاکم ہیں اور بعض حنفی علماء ہیں, انہوں نے عطیہ عوفی کی روایت اپنی کتب میں درج کی اور درج کرنے کے بعد اسے صحیح اور یا حسن قرار دیا, جبکہ یہ حدیث عطیہ عوفی کے علاوہ کسی سے بھی نہیں آئی. जैसे मुल्ला अली कारी ने अतियौफी की रवायत को नकल करने के बाद बाकायदा फ़िक्ही बहस उस पर की और फतवे की तरफ गए वो। बस हमें यह पता लगा कि मुहद्दिसीन अहल सुन्नत वो जो तराज़ अव्वल के मुहद्दिसीन हैं जो कि अकाबिर मुहद्दिसीन हैं तिर्मिज़ी इमाम हाकिम या इस तरह से चंद बुजुर्गान, उन्होंने ज़िक्र की अतियौफी की रवायात और रिवायत ज़िक्र करने के बाद उसे मकबूल या हसन दर्जा या सही दर्जे की करार दिया। चौथी दलील, अतियौफी की से रवायत वो कई सहाबा से उन्होंने रवायत ली और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में अतियौफी की रवायतें नकल की हैं। जैसे सियाह सित्ता में तीन ऐसे मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने अपनी किताबों में अतियौफी की रवायत नकल की है, सुनन निसाई हैं, सुनन इब्ने दाऊद हैं, इब्ने माजा हैं और तिर्मिज़ी हैं। इब्ने माजा, इब्ने दाऊद और तिर्मिज़ी, ये तीन मुहद्दिस हैं कि इन्हीं के नामों से सुनन की नस्बत है। इन्होंने रकम की अतियौफी की अहादीस, अगरचे उसके ऊपर जो हुक्म लगाए कि उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन नकल करना भी एक छोटी बात नहीं है। यानी तिर्मिज़ी भी अतियौफी से रवायतें ले रहे हैं, दाऊद भी ले रहे हैं और इसी तरह से इब्ने माजा भी, इब्ने दाऊद भी ले रहे हैं, इब्ने माजा भी ले रहे हैं। इसी तरह अबू याला बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तबरानी मौजमुल सगीर भी है, औसत है, कबीर है, उनकी किताबें हैं, उन्होंने भी हदीसें ली। मुसनद अहमद बिन हम्बल, उन्होंने भी ली। अच्छा, इसी तरीके से इमाम हाकिम, उन्होंने हदीसें ली हैं। बज़ार, अबू बकर बज़ार, मुसनद बज़ार में उन्होंने नकल की। आप देख रहे हैं जितना बड़ा ज़खीरे हदीस अहले सुन्नत का है, सवाई ये बुखारी मुस्लिम निसाई इन तीन चार को छोड़ के, सब के सब मुहद्दिसीन या अतियौफी की रवायात अपनी कुतुब में दर्ज की हैं। अच्छा, उनके ज़हन में सही का भी हुक्म लगा है, लेकिन ये सही अतियौफी की वजह से नहीं है। ये जो सही, क्योंकि तीसरे दर्जे, तीसरी जो दलील हमने बनाई है उसमें तो अतियौफी के से ही फ़कत वो रिवायत आई है, बकिया किसी से नहीं आई, और सही और हसन या कबूल हदीस का है। लेकिन चौथी जो दलील है उसमें ये नुक्ता नहीं है, उसे सही इसलिए करार दिया गया है क्योंकि वही हदीस किसी और रावी से भी, और वहाँ पर अतियौफी के बजाय कोई सिका रावी है जिसने भी नकल की है, सही है, उस रावी की वजह से लिख दिया सही। लेकिन हम यहाँ पर कोई और दलील का रुख किसी और तरफ है। वो दलील ये है कि अगर एक रवायत के मसलन पाँच छः मुख्तलिफ असानीद हैं या तीन चार असानीद हैं अतियौफी के अलावा, बिलफर्ज किसी और से भी वो नकल है, मसलन शाबी से नकल है, बहुत बड़ा नाम है अहले सुन्नत में शाबी, या अबान बिन तगलब से नकल है, अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम से नकल है, या किसी और से, उनमें अतियौफी नहीं है, ये शख्सियत कबूल हैं बुखारी की नज़र में। लेकिन सवाल, अगर एक ही रवायत चार मुख्तलिफ रावियों से आई हो और उनमें से एक सब की नज़र में ज़ईफ़ है, तो वो मुहद्दिस अपनी किताब में ज़ईफ़ रावी की नकल करेगा या सही रावी की जिसकी से वसाकत बयान की है? तो आखिर इन बुजुर्गान ने क्यों वो वली असानी छोड़ के अतियौफी की सनद को इख्तियार किया? सवाल ये बनता है या नहीं बनता? यानी अगर एक जगह पे अतियौफी से भी रवायत आ रही है, वही उसी जगह पे अतियौफी की जगह शाबी भी है, उसी जगह पे बिलफर्ज शाबी की जगह बान बिन तगलब है, या उसी जगह पे बिलफर्ज कोई और बुज़ुर्ग ताबिई है, तो वहाँ पे इब्ने दाऊद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी, वो लोग बकिया को जो कि औसक हैं उनकी निगाह में या अहले सुन्नत की, उन सब की इस असानीद को तर्क करके अतियौफी की सनद को क्यों ले रहा है? इसका ये मतलब है अतियौफी की सनद उसकी नज़र में कीमत रखती थी तो उसने किताब में दर्ज किया, वरना किताब में दर्ज ना करता वो। पांचवी दलील हमारे पास आती है कि हकीकत यह है कि अतियौफी जैसी शख्सियात, उन्हें रद्द इसलिए किया गया क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के वो कायल, यानी आइमाए अहले बैत अलैहिस्सलाम या घराने अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ मायल थे और मोहब्बत रखते थे। अगर वो मोहब्बत और मेलान को ना होता तो अतियौफी ज़ईफ़ कभी ना करार देते। मुस्लिम में 15 ऐसे रावी हैं कि इब्ने हजर असक़लानी ने एतराज़ किया कि ये ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुस्लिम ने रवायत ली। अतियौफी के पास इस तरह से जरा है ही नहीं जिस तरह से उन 15 के ऊपर है, और वही मेयार रखें, हत्ता कि किताब छप चुकी, हत्ता कि रिजालुल बुखारी अल्लज़ीन तकतुकुल्लिमा फ़ीहा, یفیہم، کہ وہ بخاری کے رجال جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، کتابیں اس طرح سے مختلف چھپی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ در حقیقت یہ پانچویں دلیل کا مقدمہ یہ بات ہے کہ اس لیے عطیہ اوفی جیسی شخصیات، بزرگ شخصیات، تابعین میں بزرگ اور اجلہ میں سے 111 ہجری میں وفات ہے، 110 ہجری میں آخری صحابی کی وفات ہے، اور عطیہ اوفی کی وفات کب ہے؟ 111 ہجری میں، کتنا قریب ہے فاصلہ، اس کے باوجود وہ نہیں لیتے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عطیہ اوفی اہل بیت کی طرف مائل ہے، اور انہوں نے دین لینے کا مبنا یہ بنایا ہے کہ جو بھی اہل بیت کی طرف مائل ہے اسے شیعہ قرار دیا جائے، محتاط ہو جائے اور اسے دین نہ لیا جائے۔ اور اس میں دلیل کیا ہے؟ دلیل ہم نے پہلی دلیل پڑھی تھی کہ عطیہ اوفی اگر غیر قبول ہے تو ابو حنیفہ کیوں قبول ہیں؟ امام ابو حنیفہ پہ تو جرح مفسر ہے، متکلمین کی جرح ہے، فقہا کی جرح ہے، محدثین کی جرح ہے، علماء جرح و تعدیل کی جرح ہے، امام ابو حنیفہ کیوں قبول؟ اور اتنا بڑا، دنیا میں کروڑوں لوگ ان کے پیروں، اور عطیہ اوفی جرح مبہم ہے، تابعی ہیں، اس کے باوجود غیر مقبول، آخر کیوں؟ اس کی وجہ ہم نے پڑھی اور وہ دیکھی کہ جرح کیسے مفسر ہے۔ مفسر جرح کے لیے ہم نے امام ابو حنیفہ کے پھر حالات صحیح سند طرق سے ملاحظہ کیے۔ یہ تو عطیہ اوفی کے باب میں ختم۔ ایک اور حدیث ہمارے پاس یہی ملتی ہے ہبہ دینے والی، وہ امام حاکم نے فضائل فاطمہ الزہرا علیہ السلام میں ذکر کی ہے۔ امام حاکم چوتھی صدی ہجری میں ان کی زندگی بسر ہوئی اور پانچویں صدی کے بالکل آغاز میں 405 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ حاکم امام حاکم نے کتاب لکھی ہے فضائل فاطمہ الزہرا، اس میں انہوں نے 51 نمبر صفحے پہ روایت ہے، غالباً 33 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حدیث کی جو سند ہے وہ سند تام ہے، کیونکہ وہ سند آتی ہی کس طرح حاکم اپنے شیوخ سے لے کے چلتے ہیں، ابن ابی دارم ہیں پہلے، اس کے بعد پھر آگے ان کے ساتھ محدثین اور تابعی، حتیٰ کہ سلسلہ سند پہنچ جاتا ہے امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام باقر سے امام سجاد علیہ السلام، امام سجاد سے امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اسراء آیت نمبر 26 جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ علیہ السلام کو بلایا اور فدق ہبہ کر دیا، اعطاہا فدق، یا اس طرح سے کلمات ہیں۔ اب یہ پوری سند تام ہے، اس سند میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے ابن ابی دارم کے۔ کس کی پر اعتراض ہے؟ اگر ابن ابی دارم کی توثیق ثابت ہو جائے تو کیا ثابت ہو جائے گا؟ ہبہ۔ ہبہ ثابت ہو جائے تو حق پہ کون ثابت ہو جائے گا؟ جناب فاطمہ علیہ السلام۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیونکہ حدیث رسول ہے وہ، ابن ابی دارم کون ہیں؟ ادھر بھی ہمیں وہی معیار نظر آتا ہے جو امام ابو حنیفہ اور عطیہ اوفی کے درمیان ہے، کہ عطیہ اوفی وہ غیر قبول، لیکن امام ابو حنیفہ اپنی تمام جرح کے باوجود قبول، اور انتہائی خطرناک، کتنے خطرناک، تو آج شیعوں کے اوپر کلمات نہیں بولتے، آج کے دور میں جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور تکفیری گروہ بیٹھا ہوا ہے، فتنہ گر گروہ، فتنہ گر مفتی، فتنہ گر گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروں پہ طرح طرح کی تہمتیں اور طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، اتنے تو بھیانک ترین اور پست ترین کلمات انہوں نے شیعوں کے لیے نہیں بولے جتنے امام ابو حنیفہ کے لیے بولے ہیں۔ تو وہاں پہ امام ابو حنیفہ اس کے باوجود قبول۔ آئیں اب ہم اس کا معیار دیکھتے ہیں، ابن ابی دارم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ابن ابی دارم کو پہلے ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک معیار پڑھیں، لیکن قبل اس کے کہ ابن ابی دارم کی طرف جائیں، میں تیزی سے آپ کے سامنے ایک ٹاپک، اس کو تفصیلاً مطالعہ کرنا چاہیے لیکن میں انتہائی مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس ٹاپک کا نام ہے سب الصحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام کو گالم گلوچ کرنا، سب و شتم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، سب سین بے بے، سب یا سبو، اسی سے اس میں فاعل آتا ہے ساب، اور دوسرا لفظ ہے شتمہ، یشتمو، یشتمو یا یشتمو، और शातिम इसी से इसमें फ़ाइल आता है, सब शितम यानी गालम गलोच करना। और बाज़ ने कहा कि लान इससे बालातर है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि लान वो सुन्नत इलाही है कुरान में, अगर अनावीन कुरानी किसी के ऊपर आ जाएं। लानत यानी रहमत इलाही से दूर होना बददुआ है, लेकिन सब शितम तो गालम गलोच है, वो तो तोहमतें हैं, लिहाजा गालम गलोच और तोहमतें वो बड़ी होती हैं। लेकिन बाज़ अहल सुन्नत उलमाए रिजाल और उलमाए फुकाहा ने ये लिखा है कि तान बढ़कर है। खुलासा कलाम, सहाबे किराम के ऊपर सबो शितम ये टॉपिक है। इस टॉपिक का एक ज़ैली टॉपिक ये बनता है, आया उम्मत इस्लामिया में अंबिया व रसूल अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन है। अहल सुन्नत में अक्सरियत कायल है कि खलीफ़े अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व खलीफ़ दुवम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, ये दो सबसे अफजल हैं। अब कोई अगर इन्हें अफजल ना माने उसका क्या हुक्म है, कोई किसी और सहाबी को तरजीह दे दे उसका क्या हुक्म है, ये एक टॉपिक बनता है, क्योंकि इब्ने अबी दारिम पे यही जरा है। कबल इसके कि इब्ने अबी दारिम पे जरा की तरफ आएँ, ये टॉपिक पढ़ लें। अहल सुन्नत ने इस मौजू को सब का मौजू और तफजील का मौजू, बस मौजू दो हैं एक नहीं, क्या है टॉपिक कौन से हैं दो। पहला टॉपिक क्या है, सबो शितम। दूसरा टॉपिक क्या है, फजीलत देना, क्योंकि जो फजीलत दे रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो सबो शितम करें। सही, अहले सुन्नत ने इन दो को कवर करने के लिए ख़ुद से उलमे रिजाल ने एक इस्तलाह इजाद की, और उस इस्तलाह का नाम है शिया। तीन लफ्ज़ इजाद किए, शिया, गाली और राफजी। रफ्ज़ कहते हैं इनकार करना, राफ़ज़ियुन ये फिर लकब पड़ गया जो इनकार करता है। बस तीन लफ्ज़ उलमाए रिजाल ने बहस की और इजाद की, ये इस्तलाह है, ये बाकायदा टर्म है। शिया लफ्ज़ अकायद में भी बोला जाता है, शिया लफ्ज़ फ़िक्र में भी बोला जाता है, लफ्ज़ शिया इल्म रिजाल व जहर तादील में भी आता है। अभी हम जरो तादील की रोशनी में देख रहे हैं, इस मौजू को अभी नहीं छेड़ेंगे। सब शितम का क्या हुक्म है, खुदा ने तौफीक दी तो इसे तफसीली देखेंगे। हनफी क्या कहते हैं, मालकी, हम्बली, शाफी क्या कहते हैं, इस मौजू पे किताबें मुख्तलिफ आ चुकी हैं, कदीम भी हैं जदीद भी हैं। हम देखते हैं इब्ने हजर अस्कलानी जो उलमा जर व तादील में से हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इस फ़न के इमाम शुमार होते हैं और 8वीं-9वीं सदी हिजरी से इनका ताल्लुक़ है, मुताख़िर हैं अगरचे, लेकिन अपने फ़न में बहुत बुज़ुर्ग शुमार होते हैं। अलिसाबा आपने किताब देखी होगी, फ़ी तमीज़ सहाबा के ऊपर आपने, इब्ने हजर अस्कलानी की किताब मारूफ़ तरीन किताब है। इसी तरह इनकी किताबों में है लिसानुल मीज़ान, तहजीब तहजीब, इसी तरीके से तकरीब, मुख्तलिफ किताबें हैं इल्मे जरह तादील के ऊपर। ये जो आपके सामने हिस्सा पढ़ा जा रहा है, ये कायदा है कि किसी पे जरह करनी है तो इस ज़िम्न में की जाएगी। ये लिसानुल मीज़ान इब्नुल हजर अस्कलानी अहमद बिन अली मतवफ़ा 852 हिजरी 9वीं सदी हिजरी के ये हैं। मुकदमा है किताब का मुहक्किक, इसके हैं दारुल मुअर्रफ निज़ामिया, हिंद से छपी थी, बाद में ये बैरूत से छपी है, लबनान तबासानिया है, 1971 की छाप से आपके सामने ये पेश किया जा रहा है। इस्तिलाह शिया, अभी तो ये इस तरह किताबें लिखती हैं ना, बुखारी ने इतने शियों से रवायत ली, उनसे कहें वो शिया कौन थे, वो आज के दौर की इस्तिलाह के मुताबिक थोड़ी शिया थे, वो इल्म रिजाल की इस्तिलाह के मुताबिक शिया हैं, यानी वो सारे सुन्नी हैं या उनमें से चंद होंगे जो शिया आज की इस्तिलाह के मुताबिक हैं, वरना 70-80% जिन्हें बुखारी ने शिया कहा है वह अहले सुन्नत ही हैं, लेकिन इस मेयार के मुताबिक हैं। आए अब हम देखते हैं कि उन्होंने शिया की इस्तिलाह किन के लिए वज़ की। इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं, इन्नल बिदअत अला ज़रबैन, दो किस्म की बिदअत है, फबिदअतुन सुग़रा और दूसरी है बिदअतुन कुबरा, एक है बड़ी बिदअत और एक है छोटी बिदअत। बिदअतुन सुग़रा यानी छोटी बिदअत, बिदअतुन कुबरा यानी बड़ी बिदअत। छोटी बिदअत क्या है, क्योंकि बिदअती से रवायत नहीं ली जाएगी, वो बहरहाल हुक्म आगे लगाए जाते हैं उसे देखते हैं। का गुलूव तशय्यो, अगर कोई तशय्यो में गुलूव करे तो ये क्या है, बिदअत सुग़रा है। शिया किसे कहते हैं, जो हुब अहले बैत की तरफ मेलान रखता हो। बहरहाल अभी ये आगे आता है। तशय्यो में गाली कौन शुमार होता है, का गुलूव तशय्यो का तशयी बिला गुलूबिन वला तहर्रुकिन, तहर्रुकिन के वो गुलूब नहीं करता, अगर कोई शिया है गुलूब नहीं करता और ना ही कोई अजमत को चीरता है, हरका खरका से भी है या हेर काफ से भी इसी माना में आता है, यानी गुलूफ नहीं करता ये। फहाद कसीर फ़ि ताबईन व तबाउहुम फ़ि मादीन वलवराए वसिदक़, कहते हैं बहुत सारी बड़ी तादाद ताबईन की क्या है, वो शिया है इसी माना में, जो गुलूफ नहीं करते, बिदअत सुगरा उनमें पाई जाती है। बिदअत सुगरा क्या हुई, बस शिया होना, क्योंकि दो मसादिक दिए ना, का गुलूव तशय्युए औ का तशय्यु बिला गुलूव, गुलूव के बगैर शिया हो तो तब भी बिदअत क्या है, सुगरा, और अगर गुलूव तशय्यु में गुलूव हो तो क्या, तशय्यु का गुलूव होना क्या है, बिदअत सुगरा। फहाज़ा कसीर फ़ि ताबईन, जिन्होंने सहाबा के बाद कौन सी नस्ल आई, ताबईन की नस्ल आई, ताबईन कहते हैं जिन्होंने सहाबा को देखा और ईमान पे उनका रुख्सत ईमान पे हुए। कसीर ताबईन क्या थे, शिया थे, इस माना में शिया थे। व तबाउहुम मादीन वलवराए वसिदक, वो कहते हैं कि वह इतबा करते और इन व तबाहिम और इन ताबईन की इतबा करने वाले, तब ताबईन दीन दार थे ये, वरा यानी मुहर्रमात से बचते थे और सच्चे थे, सिद्क सादिक थे, झूठ नहीं बोलते थे। फला रुद्दा हदीस हा उला, अगर इन शियों की हदीसों को रद्द कर दिया जाए, लज़हबा जुमलत मिनल आसार नबुव्वत नबवियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने आसार हैं वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। अगर हम बिदत सुगरा को भी रद्द कर दें और शिया, क्योंकि इधर शिया उसे नहीं कहा जा रहा जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को इमाम माने, इधर शिया कहा जा रहा है जो हुब अहले बैत रखता है, और हुब अहले बैत रखने वालों से ही हदीस ली, अगर इन शियों की हदीसों को हम ख़त्म कर दें तो क्या हो जाएगा, आसार नबवी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। व हाज़ी मफसदतुन बय्यनतुन, ये तो बहुत बड़ा फसाद हुआ। सुम्मा बिदअतुन कुबरा, इसके बाद क्या आता है, बिदअते कुबरा का रफ़्ज़ुल कामिल वल गुलूव फ़ीह, कि कामिल वो राफजी है, पक्का राफजी जिसे कहते हैं, वल गुलूव फ़ीह और रफ़्ज़ में भी गुलूव करने वाला या तशय्यु में बहुत गुलूव करने वाला। वल हत्त अला अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, कि अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इन दोनों के ऊपर वो मसलन हत्त हुरमत करने वाला, इनकी हुरमत को पामाल करने वाला हो, यानी तनकीद करने वाला है, किन की, खलीफ़े अव्वल हज़रत अबू बकर और खलीफ़े दुम हज़रत उमर, इनकी तनकीद करने वाला है, इनके ऊपर नक़द करने वाला है, हुरमत पामाल करने वाला है। व दुआ इला ज़ालिक, और लोगों को इस तशय्यु की तरफ बुलाता भी है कि आओ ये वाला काम करो, जैसे होते हैं ना तबर्रा पार्टी, वह तबर्रा पार्टी की तरफ बुलाता भी है, तो ये बिद्दत कुबरा है। फ़हा उला ला युक़बलु हदीसुहुम, इनकी हदीस कबूल नहीं की जाएंगी। ये बहुत अहम जुमला है जो अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं अभी आगे, क्योंकि हमने अतियाफ़ी की दफ़ा मुकारना और मुकायसा किन के दरमियान किया था, अतियाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा, अभी हम मुकारना करेंगे इब्न अबी दारिम और अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हम्माम के दरमियान, इस उसमें ये वाला जुमला बहुत अहमियत का हामिल है। वह क्या है, फ़हा उला ला युक़बलु हदीसुहुम, उनकी हदीसें कबूल नहीं की जाएंगी। वला करामत, और इनकी कोई इज़्ज़त एहतराम भी नहीं है, जो खलीफ़े अव्वल के और खलीफ़े दुम की शख्सियत को पामाल करे और हुरमत को पामाल करे उसकी कोई हदीस कबूल नहीं। और ये जो शख्स है इसके सदाकत भी इसे सादिक नहीं कहा जाएगा। वला मामूनन बलिल कज़ब शिआरुहुम, ना ये अमीन है और ना ये महफूज है झूठ से, बल्कि झूठ बोलना इनका शिआर है, जो ये वाली बातें करते हैं और इस नौयत के राफजी हैं, गाली हैं, झूठ बोलना तो इनका शियार है। व तकय्यत व निफाक़ दिसारुहुम, ये इनके नज़रियात में तकय्या निफाक, ये इनका दीन है और यही इनकी तबाहियां हैं, ये इनकी हलाकतें हैं। फ़कैफ़ युक़बलु मन हाज़ा हालहु, जिसका हाल ऐसा हो उसकी हदीसें ली जा सकती हैं, यानी तकय्या का कायल है, मुनाफिक है, झूठा है। अब ये इब्ने हजर अस्कलानी अपनी तरफ से एक तोहमत या तशद्दुद दिखा रहे हैं। हाशा व कला कल्ला फशीई अलगालिफ ज़मान सलफ़, कहते हैं कि ज़माने सलफ़ में भी शीई और गाली थे, शीई गाली था, और इसी तरीके से वो लोग कलाम किया कि वो कैसे पहचाने जाते थे, वो अपना कलाम अपने कलाम के ज़रिए से उस दौर में यानी सहाबा के दौर में, ताबीन से पहले सहाबा के दौर में भी ये लोग कैसे पहचाने जाते थे कि ये लोग हज़रत उस्मान, ज़ुबैर, तलहा और जिन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की है उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करते थे, उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान यानी उस्मान, ज़ुबैर, तलहा और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अली अलैहिस्सलाम से मिम्मन हारबा, जिन्होंने मिम्मन हारब अली हैं, जिन्होंने अली अलैहिस्सलाम से जंगें की उनके बारे में ये जब ज़ुबान दराज़ी करते तो इससे ये पहचाने जाते थे और ये राफिज़ा थे, ये शिया गाली थे। वतअरज़ लिसब्बिहिम, कहते हैं कि वो हमेशा उनको गालम गलौज और सब शितम करते रहते थे। कहते हैं ये तो पुराने दौर में, पुराने दौर में शिया गाली और राफिज़ी कैसे पहचाना चाहता था, वो देखते थे हज़रत उस्मान को क्या कह रहे हैं, हज़रत तलहा, ज़ुबैर और जिन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा वगैरह। हमारे दौर में कैसे, वलगाली फ़ी ज़माना वउर्फ़ ना, हमारे ज़माने में ये कैसे पहचाने जाते हैं या फ़ी ज़माना कि हम इन्हें पहचानते, हुवल्लज़ी कफ़रा हौला सादा, ये इन तमाम बुजुर्गान जो सादा सैयद की जमा है, बुजुर्गान इनका कुफ्र करते हैं, व तबर्रा मिन शेखैन और ऐदन और अबू बकर और हज़रत उमर इन दोनों के ऊपर, शेखैन के ऊपर क्या करते हैं, तबर्रा करते हैं। फहादा ज़ालुन मुफ्तर, जो शेखैन के ऊपर तबर्रा करे या इन बुजुर्गान के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करे वो गुमराह है और इफ्तरा परदाज़ है, झूठ बांधने वाला है। अच्छा आगे फिर वो बयान करते हैं कि इख्तलफ़ नास फ़ी रिवायत राफ़िज़ा अला सलासत अक़वाल, राफ़िज़ी कोई आ जाए, बस राफ़िज़ी कौन हुआ इस बयान के मुताबिक, राफ़िज़ी वो शख्स है जो खलीफ़े अव्वल या खलीफ़े दुव्वम के तौहीन करे, तबर्रा करे, वो कौन होगा, राफ़िज़ी, या राफ़िज़ी वो है उनके ज़माने में, फिर तमाम ना उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में और हम लोग जिन्हें पहचानते हैं उनमें वो शख्स कि जो इन बुज़ुर्गान को काफिर करार दे या इन बुज़ुर्गान को मसा मुनाफिक करार दे या इन बुज़ुर्गान के ऊपर तोहमत लगाए, उनकी हतक अमेज़ी करे और हुरमत को पामाल करे, वो क्या है, राफ़िज़ी। बस तबर्रा करने वाला कौन कहलाया, राफ़िज़ी कहलाया। राफ़िज़ी से हदीसें ली जाएंगी या नहीं, इसका यह मतलब है कि ये तो सदर इस्लाम में पाए जाते थे, ये तो बाद में नहीं तबका आया, सहाबा और ताबीन में पाए जाते थे या नहीं, खुद उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान को बुरा भला कहने वाले, तलहा ज़ुबैर को बुरा भला कहने वाले, लेकिन ये बहुत ताजुब की बात है, इन्होंने ये नहीं कहा कि अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने वाले। मिम्मन हारब अलियन, ये एक तरफा है या नहीं, उस दौर में तो जो अली अलैहिस्सलाम से जिन्होंने जंग की वो अली को भी तो बुरा भला कहते थे, अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर भी गालम गलौज तो करते थे, उनके ऊपर ये हुक्म नहीं लगाते, वो सही उनके ऊपर हुक्म इस चीज़ का नहीं लगाते। सलासत अक़वाल, तीन अक़वाल हैं कि राफ़िज़ी से हदीस ली जाएगी यानी, पहला है अलमन मुतलक़न, असलन उस राफ़िज़ी से नहीं ली जाएगी, पता लग जाए कोई शख्स वो सहाबा पे तबर्रा करता है या गालम गलोच करता है या लान तान करता है, लान तान तो बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेके जाते हैं, तो वो राफ़िज़ी है कामिल और कोई उसका इज़्ज़त एहतराम नहीं है और मन मुतलक है। अच्छा वो कत्ल किया जाएगा या नहीं, ये फ़िकी बहस चली आती है, फ़िकी बहस में है कि काफिर है या काफिर नहीं है ऐसा करने वाला, बाज़ ने कहा है कि वो काफिर और मुर्तद है, बाज़ ने कहा नहीं काफिर मुर्तद नहीं फासिक है, लेकिन ऐसा फासिक थे हदूद जारी होंगी वगैरह वगैरह, वो फ़िक में किसी और मौरद में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहला कौल क्या हो गया, मन ए मुतलक। दूसरा है अतरखीस मुतलकन इल्ला फी मन यकज़िब व यज़ा, कहते हैं छोड़ देंगे मगर ये कि अगर साबित हो जाए झूठ बोलता और हदीसें गढ़ता है उससे नहीं ली जाएगी। बस दूसरा कौल किया मुतलकन राफ़िज़ी से हदीसें ली जाएंगी, ठीक है गालम गलोच करता है, रसूल को तो गालम गलोच नहीं किया ना, गैर मासूम को किया है, सहाबा को किया है, तो वो कहते हैं कि उससे हदीसें ली जाएंगी, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है हदीसें घड़ता है फिर हदीसें नहीं लेंगे। तीसरा तफसील, तफसीली कौल है, फतुकबल रिवायत राफ़िज़ी अस्सदूक अलआरिफ बिमा यहदुस, ऐसा राफ़िज़ी हो जो सच्चा भी हो, इसका ये मतलब है राफ़िज़ी और सच हो, सच्चा हो सकता है इस तीसरे कौल के मुताबिक, और आरिफ आरिफ से मुराद है हदीसें जानने वाला, आज की इस्तलाह वाला आरिफ नहीं। बिमा यहदुस, यानी वो ये बात जानता है क्या कह रहा है। कहते हैं कि इसकी तुकबालो रिवा, ऐसे राफजी की हदीसें ले लेंगे। वा तुरद्दो रिवायतो राफजी अद्दाइया, लेकिन वो जो राफजी जो बुलाता है रफ्ज की तरफ यानी तबर्र की तरफ बुलाता है, वलाउ काना सदूकन, अगर सच्चा भी हो तो उसे हदीसें नहीं ली जाएंगी। वक़ाला अशहब, फिर आगे बयान है थोड़ा तफसीली, फिर इन्होंने बताया पहले कौल का कौन कायल है। मैं सिर्फ वो आपके सामने अफराद पढ़ दूँ जो पहले कौल के कायल हैं कि इनमें से फ़ाइन्नहुम यदाउन अल हदीस, व ये मोहम्मद बिन सईद अस्बहानी, समय तो शरीकन यकूल अहमल इल्म अन कुल्ल मन लकीत, जिससे तुम मिलते हो उससे हदीसें ले लो, इल्ला राफिज़ा, राफिज़ा से ना लेना। फ़ाइन्नहुम यदाउन अल हदीस, वो हदीसें घड़ते हैं, व यत्तखिज़ूनहु दीनन हाज़ा आखिर कलामी, और इसको फिर हदीस घड़ के उसी को दीन के तौर पर इख्तियार कर लेते हैं। कुल तो फलमान मिन कबूल रवायतिल मुब्तदिअल्लज़ीन लम यकफुरू बिबिदअतिहिम कर्राफिज़ा वल ख़वारिज। अच्छा, ज़हबा इलैहि मालिक, इमाम मालिक का ये नज़रिया, व अस्हाब मालिक, वल क़ाज़ी अबू बकर बाक़िलानी, या शायरा में से हैं, व तबाही, और जो इनकी इतबा में है अबू बकर बाक़िलानी के। अच्छा, फिर इसके बाद अगला कौल दुवम आ जाता है, वल कबूल मुतलकन, मुतलकन राफिजी की रवायात कबूल है, मगर यह कि वह अपनी बिदत के ऊपर उसने हदीसें ना घड़ी, इल्ला फीमन यकफुर बिबिदअतिही ही, मगर ये कि उसकी बिदत की वजह से अगर कुफर का फतवा लग गया उससे नहीं ली जाएगी। इस ये नज़रिया अबू हनीफा और अबू यूसुफ़, बस इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ़ की नज़र में मुतलकन राफिजी से हदीसें ली जाएंगी। व ताइफ़तुन, और इस तरह दूसरा ग्रोह भी है, वरुवी अन शाफ़ी, शाफ़ी के बारे में भी ये कहा गया कि राफ़िज़ी हो तो उससे हदीसें ली जाएंगी। तीसरा कौल है तफसील का, और ये अक्सर अहले हदीस उलमा का है, इब्ने हब्बान और इब्ने हब्बान ने तो इजमा का दावा किया। तीसरा वही है कि अगर सादिक है और जो बोल रहा है वो जानता है तो वो राफ़िज़ी से हदीसें ले ली जाएंगी, लेकिन वो राफ़िज़ी जो रफ़ और सहाबा के ख़िलाफ़ तोहीन करने के ऊपर लोगों को उभारता है उसकी रद्द कर दी जाएंगी। ये उलमाएँ अहले हदीस का नज़रिया, ये आपने इधर देखा, बकिया हम हिस्सा तर्क कर देते हैं। ये मुकदमे में लिसानुल मीज़ान के बयान हुआ है। आए अब हम तेज़ी से इब्ने अबी दारिम को देखते हैं। इब्ने अबी दारिम ये गवाह हैं फदक की रवायत के। इब्ने अबी दारिम का मुकारना हम कर रहे हैं अब्दुलरज़ाक बिन हम्माम के साथ। अब्दुलरज़ाक बिन हम्माम अहले सुन्नत में एक बड़ी शख्सियत शुमार होती हैं। जहाँ तक अबू बकर इब्न अबी दारिम का मामला है तो इनके मैं हालात पढ़ देता हूँ, और ये हालात हैं सीर आलाम नुबला शमसुद्दीन मोहम्मद ज़ाहबी, मुतवफ़ा 748 हिजरी, जिल्द 12 सफ़ा 126, रकम है 3196, 3196। यही तर्जमा उनका मीज़ानुल इतदाल में भी इसी तरह से आया है और दीगर कुतुब में भी। हम ये ज़ाहबी की ज़ुबानी पढ़ रहे हैं। इनका नाम है इब्न अबी दारिम के इनवान से पहचाने जाते हैं, अल इमाम अल हाफिज़ अल फाज़िल, ये ज़ाहबी लिख रहे हैं। अल इमाम यानी इल्मे हदीस में क्या है, इमाम। अल हाफिज़, हाफिज़ कहते हैं जिसे कसीर रिवायात याद हों, 1 लाख से ऊपर रिवायतें हिफ्ज़ हों, उसे ये कहते हैं हाफिज़। अल फाज़िल अबू बकर, ये कुनियत है। अहमद बिन मोहम्मद अस्सिर्री, अहमद इनका नाम है, बिन यहया बिन सिर बिन अबी दारिम, तमीमी हैं यानी अरब हैं, कूफ़ी हैं, कूफा के रहने वाले। अशियाई, ये ज़ाहबी नहीं लिखा, शियाई किस माना में, शिया वही जो इल्मे रिजाल में पढ़ा है ना, इस माना में कि अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहला इमाम मानते हैं, इस माना में शिया जहर तादील में इस माना में शिया नहीं आता। मुहद्दिसुल कूफा, कूफा में मुहद्दिस हैं अहले सुन्नत के। इब्ने अबी दारिम के ऊपर शिया कहना यह ज़ाहबी का अपना फतवा है, अगर ये शिया होते तो कूफा में शिया फुकहा और शिया मुहद्दिसीन उस दौर में पाए जाते थे, शेख सदूक के दौर का इब्ने अबी दारिम। लेकिन शिया ना किसी सनद में इब्ने अबी दारिम, ना किसी शिया से मुलाकात है, ना शिया इल्मे रिजाल में है, ना शिया कुतुब में है, ना किसी आलिम की मुलाकात हुई, कोई तस्करा शिया कुतुब में इब्ने अबी दारिम का नहीं है, तो कैसे ये शिया हो गया। लिहाजा ये अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत के इतकादात में कामिलन वो क्योंकि नज़र रखता था हदीसों पर, इसलिए बाज़ नज़रियात का कायल हो गया, हक़ाइक़ जानता था, इसलिए बास का कायल हो गया इब्ने अबी दारिम। इसने जो हदीसें ली हैं उनमें बड़ी शख्सियत इब्राहिम बिन अब्दुल्ला अबसी हैं अल कसार, और इस तरह दीगर नाम है। इनमें एक बड़ा नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुतय्यन, मुतय्यनन, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुतय्यनन। ये अबू बकर हज़रमी के नाम से भी हैं, इनसे शिया कुतुब में भी रवायतें आई हैं, सुनियों में ये सिका हैं। मैं इनके बारे में सिर्फ मुतय्यन के बारे में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, और ये भी आपकी खिदमत में जो पढ़ा जा रहा है ये सैरुल आलाम नुबला जिल नंबर 11 सफ़ा 128, रकम है 2534। ये हैं शेख हाफिज़ सादिक मुहद्दिस कूफा, कूफा में ही होते थे हज़रमी मुतय्यन। अबू जाफ़र है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल हज़रमी, मुलक्कब है मुतय्यन के नाम से। अच्छा, इसमें जो एक ही चीज़ मैं पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में, क्योंकि अहले सुन्नत के नज़दीक 95 साल की उम्र में इनकी वफ़ात है। काला इब्न अबी दारिम, इब्न अबी दारिम कहते हैं, कतब तो बे उसबी अन मुतय्यन में अत अल्फ़ हदीस, इन हाथों से, दो उंगलियों से मैंने अपनी, इन उंगलियों से मैंने मुतय्यन से 1,00,000 हदीसें लिखी। बस इब्न अबी दारिम किस से हदीसें ले रहे हैं? मुतय्यन से ले रहे हैं सारी की सारी हदीसें। सुलान दार कुतनी, दार कुतनी से पूछा कि ये हज़रमी कैसे हैं, मुतय्यन कैसे हैं? कहा सिकतुन जबलुन, इंतहाई सिका और पहाड़ हैं वो साकत के ये। तो ये आपने देखा कि बस इससे हमें ये पता लग गया कि इब्ने अबी दारिम ने अपनी जेब से हदीसें नहीं निकाली, मुतय्यन से नकल की, और मुतय्यन शिया सुन्नी दोनों में सिका हैं। अच्छा, हद आसान हो, इब्ने अबी दारिम से किसने हदीसें ली हैं? हाकिम अबू बकर बिन मरदवाए, यहया बिन इब्राहिम, काजी अबू बकर हीरी और दूसरे हैं। हाकिम बड़ा नाम है और अबू बकर बिन मरदवाए भी बड़ा नाम है। आगे देखें, कान मौसूफ़न बिल हिफ्ज़ वल मारिफा, अबू बकर दारमी, इब्ने अबी दारिम वो हाफजा बड़ा कवि था और मारिफत बहुत ही हदीसों की शोहरत रखते थे। इल्ला अन्नहु यतरफ़द, मगर राफजी थे। अब हम देखें, राफजी हो तो सबूत मिलना चाहिए ना, राफजी थे। राफजी कौन है? अभी हमने पढ़ा, जो सबो शितम करे, जो लान तान करे, वो है राफजी, दुरुस्त। अब हम देखते हैं कि कहीं अपने अबी दारिम ने कई किया सबो शितम। नीचे आ देखते हैं, वक़द अल्लफ फिल हत अला बाद सहाबा, बाद सहाबा की हुरमत को पामाल करने में कुछ हदीसें लिखी हैं। असल जुर्म यही है बेचारे अपने अबी दारिम का, उसने जो तालीफ किया है उससे बाद सहाबा के ऊपर तनकीद आती है। वहुआ माजालिक लईसब सिकतिन फिन नकल, कहते हैं कि अगरचे उसने बहुत कुछ लिखा है लेकिन वो नकल करने में सिका नहीं है। कोई पूछे क्यों सिका नहीं है, वो बीमारी क्या थी जिसकी वजह से तुम कह रहे हो सिका नहीं है? वमिन आलिमा वकाली मिन हो, कहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आया है वो इस तरीके से है कि बयान नीचे रवायात की हैं, उनमें से आगे नीचे के हिस्से को हम पढ़ते हैं। मात अबू बकर फिल मुहर्रम सना इस्नतैन व खमसीना व सलासमिया, अबू बकर इब्न अबी दारिम मुहर्रम में वफ़ात है और 352 हिजरी में, 352 हिजरी में वफ़ात है, और अपने दूसरी किताब गालिब मीज़ानुल इतदाल में ज़ाहबी ने 357 हिजरी लिखा है। हाकिम कहते हैं, हुआ राफ़िदीयुन गैर सिक़तिन, इमाम हाकिम ने नकल की है रवायत लेकिन कहते हैं कि गैर सिक़तिन, राफ़िदी या गैर सिक़ा है, लेकिन सवाल क्यों गैर सिक़ा है? गैर सिका होने की वजह होनी चाहिए ना। राफदी के बारे में भी आप अकवाल पढ़ चुके हैं, माने मुतलक के बहुत कम अफराद कायल हैं। काल मोहम्मद बिन हम्माद अल हाफिज़, मोहम्मद बिन हम्माद हाफिज़ कहते हैं, काना मुस्तकीम अल अम्र आमत दह रही, अब जराइम देखें क्या हैं अहले सुन्नत की नज़र में। इब्न अबी दारिम के जराइम पढ़ें, कहते हैं पूरी ज़िंदगी तो सिरात मुस्तकीम पे रहे इब्न अबी दारिम। सुम्मा फ़ी आखिर अय्याम ही, आखिरी ज़माने में, काना अक्सर मा युक़रहु अलैहिल मसालिब, मसालिब कहते हैं नकाइस, उनके सामने नकाइस पढ़े जाते थे सहाबा के। हज़र तो हूँ, मैं एक दिन इब्ने अबी दारिम की खिदमत में हाजिर हुआ, व रजुलोन, एक शख्स था, यकरा अलैहि है, वो पढ़ रहा था इब्ने अबी दारिम के सामने ये बात, अन्ना उमर रफस फ़ातिमा, उमर ने फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को लात मारी, हत्ता असकतत मुहस्सिनन, हत्ता कि उनके बेटे मुहस्सिन वो साकित हो गए। ये बात, फ़कत ये जुर्म है कि वो सिर्फ सुन रहे इब्ने अबी दारिम ये बात, वो कहता है ये क्या कहा कर रहे इब्ने अबी दारिम, एक शख्स है वो ये बात पढ़ रहा है। फिर आगे वफ़ी ख़बर इन आखर, यही मोहम्मद बिन हम्माद कहते हैं, एक और ख़बर ये भी है, क़ौलहु तआला, अल्लाह का ये फरमान है कि वजा फ़िरऔन, तो इसकी तफसीर की उमर, फिरौन से क्या मुराद है? उमर। व मन कबलहू, और उमर से पहले और फिरौन से पहले जो आए, जा फिरौन व मन कबलहू, फिरौन और जो उससे पहले आए। तो इसकी तफसीर किया वो शख्स बयान कर रहा है, इब्न अबी तारिम खामोशी से सुन रहा है, इब्न अबी तारिम के सामने बस ये बयान किया जा रहा है, वो सुन रहा है। तो वो बोलने वाला शख्स कह रहा है फिरौन से मुराद उमर हैं और कबलहू से मुराद अबू बकर हैं, वलमुतफ़िकात और मुतफ़िकात से मुराद आयशा व हफ्सा हैं। फवाफ़क़तुहू व तरक्तु हदीसहू, मैंने जब ये सुना तो मैं तो निकल गया उसकी बारगाह से और उसकी हदीसें लेना छोड़ दी। ये इब्न अबी दारिम के ऊपर जरा है। कुल तो अब ज़ाहबी ख़ुद हुक्म लगाता है, शेखुन दालुन मुअस्सरुन, कहते हैं कि ये तो गुमराह परागंदा और इंतहाई गुमराह इंसान है। आपने देखा इब्न अबी दारिम, इसके अलावा इब्न अबी दारिम के बारे में और कोई बयान नहीं, ये दो बात। आखिर क्यों जनाब सैयदा के बारे में ये राय रखता है? खुद बयान भी नहीं किया, कुछ सुन रहा है। वो तो रजुलुन यक्रऊ अलैहि, एक शख्स है वो सामने पढ़ रहा है, कहते हैं कि वो कहता नहीं था, मना नहीं करता था लोगों को। यानी अगर कोई शख्स मना ना करे, ऐसा कलाम पढ़े जिसमें खलीफे अव्वल व खलीफे दोवम के ऊपर कोई हर्फ आए और सुनने वाला खामोशी से सुनता रहे, तो उसे हदीसें ही नहीं लेनी। आप देख रहे हैं कोई नुक्ता है क्या? लिखा इमाम हाफिज, अच्छा उसके बाद क्या उन्होंने अलकाब लिखे? आपने देखा अल इमाम अल हाफिज अल फाजिल कान मौसूफ़न बिल हिफ्ज़ वल मारिफा। और फिर इब्न अबी दारिम के बारे में ये भी मुतय्यन से ही एक और जगह पर भी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सुलेमान हज़रमी इब्न अबी दारिम कहते हैं मैंने 150,000 रवायतें मुतय्यन से ली हैं। आपने देखा कि इन सब जगहों पर जितनी है बेचारे के ऊपर क्यों इतना तबर्रा किया गया? सिर्फ इस नज़रिए की वजह से। और इसने ख़ुद बोला भी नहीं है। राफजी तो वो होता है जो तबर्रा करे, ये तो चुप बैठा रहा, कोई ना मुस्कराया ना हंसा ना कोई तायद में बात की, सुन रहा है बस। वो कहता है मैं उधर से उठ के चला गया। और ये हदीस अब इमाम हाकिम ने फ़ज़ाइल फ़ातिमा ज़हरा में नकल की किताब में, कि ये हदीस नंबर हदीस जो इसमें है वो मैंने जैसे भी पहले बताया 42 और 43 सफ़े पे ऊपर है। 42 43 सफ़े पे तहकीक करने वाला अली रज़ा बिन अब्दुल्ला, अब ये किस तरह जराह कर रहे हैं, देखें क्या ये जराह का अंदाज़ ये होता है। कहता है वला अज़ालु अतअज्जब मिन इखराजुल हाकिम, हाकिम क्यों इब्न अबी दारिम से पकड़ के इधर हदीस ले आया जिससे फदक साबित होता है? ले अहदिल किबार राफिज़ा, ये तो राफिज़ा में एक बड़ा शेख और बड़ा आलिम था, जबकि शिया दुनिया में है ही नहीं इब्न अबी दारिम, ये सुन्नियों का ही एक बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन चूंकि वो 150,000 हदीसें जानता था और उसमें से अच्छी तरह से काना मौसूफ़न बिल हिफ्ज़ वल मारिफा, ज़ाहबी ने ये कहा है, इस वजह से वो जानता था कौन से वाक़यात पहली सदी हिजरी में वाक़ हुए हैं और उनमें हक किया था। जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसे तशद्दुद हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि ये चूँकि हक़ायक़ जानता है, इसे नज़रअंदाज किया जाए। इसलिए वो कहते हैं लिहाद के बारे राफ़िज़ा अल अखबास, खबीस तरीन इंसान है, अनजास नजिस तरीन इंसान है। अल्लज़ीन कानू यज़ऊन अल हदीस फ़ी मसालिब सहाबा, सहाबा के मसालिब में ही हदीसें घड़ा करते हैं। बिदायत मिन सिद्दीक़ अबी बकर व फारूक व उमर व ज़िन्नूरैन उस्मान व इंतहा बिस्सदी सिद्दीक़ आयशा व इब्नत फारूक हफ्सा अन सहाबत रसूलिल्लाह। कहते हैं हाज़ राफ़ज़ी अलवज़्ज़ा, ये इब्न अबी दारिम देखो राफ़ज़ी है, वज़्ज़ा है, अलकज़्ज़ाब हदीसें घड़ने वाला झूठा, हुआ अबू बकर बिन अबी दारिम। कहते हैं ये अबू बकर बिन अबी दारिम है कि जो खबीस है, नजिस है, राफ़ज़ी है, वज़्ज़ा है, कज़्ज़ाब है। हाकिम को इससे रवायतें नहीं लेनी चाहिए थी। ये तहकीक है, ये मुहक्किक़ हज़रात तहकीक कर रहे हैं क्यों इब्न अबी दारिम ने ये बात लिख दी कि उमर रफ़सा फ़ातिमा। मुलाहिज़ा किया, अगर वो आँखों से देख लेते और फिर कोई बयान करते तो तब भी यही बात कहते। खुजा ये कि ये तो उनके आलिम फाजिल इमामुल हदीस ये कह रहा है। अगर आज कोई हदीस और सनद लेके शिया कहे तो वो तो वाजिबुल कत्ल कहेगा कि ये बात ही क्यों किया। यानी अगर तशद्दुद हुआ जनाब सैयदा पे तो ठीक है, लेकिन ये बात नहीं कहनी। अगर ये बात की तो वज़्ज़ा, खबीस, नजिस, कज़्ज़ाब, इस हकीकत को नहीं बयान करना। इसके ऊपर मबना, वो मबना है कि जिसके ऊपर तज़ीम को उन्होंने बरकरार किया है। अबू बकर इब्न अबी दारिम, उस बेचारे का कसूर यह है कि फदक वाली रवायत आ गई। ये नहीं है कि उसने ये कह दिया, अगरचे अहले सुन्नत में अगर कोई अभी अबू बकर इब्ने अबी दारिम सुनने वाला है तो ये जरा, लेकिन अगर कोई कहे कि उमर बिन खत्ताब खलीफे दुवम वो अनवक हैं, अहमक हैं, ये मुझे बताएं ये तबर्रा हुआ या नहीं। अगर ये कह दिया जाए कि माविया के बारे में, माविया इब्ने अबी सुफियान के बारे में, कि इसके ज़िक्र से हमारी महफिल को नजिस ना करो, क्या गंदगी फैला रहे हो, ये तबर्रा है या नहीं। इब्ने अबी दारिम बस सुनता था, एक बंदा है जो बोलता है लेकिन बुखारी उससे 200 के करीब हदीसें लेता है। इधर आए दूसरे रावी अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम इब्न नाफे, ये जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ, इनका बहुत तवील हालात ज़िंदगी लिखा है, वो मैं आपके सामने सारा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इसके चंद हिस्से पढ़ूंगा, क्योंकि हवाला मैं पूरा पढ़ दूँ कि ये भी ज़हबी से ही हमने नकल किया है और ज़हबी ने तफसील के साथ आप देख लें कि ये कितना मुफसल है। सीरुल आलाम नुबला ज़हबी ने लिखा है, जिल नंबर 8 सफ़ा 222 से 231 तक, 11 सफ़े तकरीबन, 10 सफ़े, 9 सफ़े, 10 सफ़े लिखे, नाशिर दारुल हदीस काहिरा 2006 में ये किताब छपी है। अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम इब्न नाफे हाफिज़, इब्न अबी दारिम भी हाफिज़ था, अल कबीर आलिमुल यमन अबू बकर अल हिमयरी मौलाहुम सनआनी, यमन का रहने वाला, अस्सिका तो अशीई, ये सिका है और शिया है लेकिन सिका है, इब्न अबी दारिम तो चुप था लेकिन शिया था लेकिन गैर सिका, इसके बावजूद उससे नहीं लिया जाएगा। इरतहला इलल हिजाज व शाम व इराक व साफरा फि तिजारा, हिजाज शाम इराक इन सब जगहों के ऊपर गया। बहरहाल हदीसें जिन्होंने ली हैं अकाबिर अहले मुहद्दिसीन हैं, जैसे मामर हैं, इब्न जुरैज हैं, इन्होंने ली हैं, और हज्जाज बिन अरता ने बहुत सारी रवायतें ली, मामर ने बहुत इससे नकल किया है। अच्छा, मालिक बिन अनस भी हैं और इस तरह से दीगर अफराद हैं जिनसे, हाँ ये अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम जिनसे लेता है वो मामर हैं, इब्न जुरैज हैं, मालिक बिन अनस हैं, सुफियान सौरी हैं वगैरह। अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम से किन किन लोगों ने नकल किया है? सुफियान बिन उयैना, यहया बिन माइन जिनके बार बार नाम आए, अली बिन मदीनी, अहमद बिन हम्बल, इब्न रहवाय। अच्छा, इसी तरीके से दीगर बुजुर्गान हैं जिन्होंने अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम की हदीसों पे एतमाद किया है। ये पैदा हुआ 126 हिजरी में, यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में विलादत हुई अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम की। अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम एक बड़ा अरसा मामर के साथ रहे, क्योंकि ज़्यादातर रवायतें अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम की मामर से ही हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा कबूल भी है। अच्छा, और इससे आगे हम तेज़ी से आगे चलते हैं ताकि हम इसमें देखें, हाफ़ज़ा इसका बड़ा कवि था और इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल रिजालियों ने पढ़े हैं, उसको आगे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम वाक़या देखते हैं, यहाँ पर एक वाक़या ज़िक्र किया है फसवी ने कि मोहम्मद बिन अबी सर्री कहते हैं कि कुल तले अब्दुल रज़ाक के बारे के से मैंने कहा, मा रायु का अंत, यानी फिर तफजील, आप तफजील के बारे में क्या कहते हैं, अली अलैहिस्सलाम को फजीलत देते हैं। क़ाल फ़अबा अन युख़बिरनी, कहा कि मुझसे ये सवाल ना पूछो, मैं ये नहीं बताऊँगा। कहते हैं उसके बाद मैंने सुफियान से पूछा तो सुफियान ने कहा कि काना सुफियान यकूल, सुफियान ये कहा करता था कि सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर चुप हो जाते हैं। फिर उन्होंने इसके बाद आगे बयान, यानी फजीलत अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम नहीं बयान करता था मेरी नज़र में किसको फजीलत है, अली अलैहिस्सलाम को फजीलत है या नहीं, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को फजीलत है। इसी तरीके से बाद में बात आई तो बाज़ ने यह कहा कि मैंने देखा है कि इसमें तशय्यो पाई जाती है, अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम में तशय्यो पाई जाती है, यानी ये माइल है कि अली अलैहिस्सलाम को फजीलत देते, उस्मान पे तो, हज़रत उस्मान पे तो हतमन वो फजीलत देते हैं। फिर अब्दुल्ला बिन अहमद कहते हैं, सअल तो अभी मैंने अपने वालिद से सवाल किया, अकान अब्दुल रज़ाक युफ़रतु फ़ित तशय्यो, तशय्यो में इफ़रात से काम लेता है यानी गुलूव करता है। कहते हैं, अम्मा अना फ़ला अस्मा मिन हो फ़ी हाज़ा शय्यन, मैंने तो अभी तक अब्दुल रज़ाक से कोई गुलूव वाली चीज़ नहीं सुनी। लेकिन बाज़ अफराद हैं जो लोगों की जो ख़बरें हैं उसके ऊपर वो ताजुब करते हैं, यानी कुछ ना कुछ इसमें पाया जाता है। अच्छा, आगे देखें, तशय्यो बहरहाल क्योंकि फजीलत वो बयान नहीं करते थे, दे भी जाते थे। अबू बकर जाफ़र उकैली कहते हैं, हद्दसना अहमद बिन बुकैर अल हज़रमी, हद्दसना मोहम्मद बिन इसहाक बिन यजीद बसरी, मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं, समय तो मखलदन अशरी, मखलद शरी यकूल, वो कहते हैं, कुन तो इंदा अब्दुल रज़ाक, मैं अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम के पास बैठा हुआ था, एक शख्स आया, फ़ज़ाकर रजुलुन, मुआविया शख्स आया और उसने मुआविया का तस्करा शुरू कर दिया। फ़क़ाल अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने कहा, ला तुक़ज़्ज़िर मजलिसना बिज़िक्र वलदिल अभी सुफ़ियान, वलद अभी सुफ़ियान, अबू सुफ़ियान के बेटे के ज़िक्र से हमारी मजलिस में गंदगी मत फैलाओ। अब ये मुझे बताएं कि ये तबर्रा है या नहीं? इस तबर्रा के बावजूद हदीसें ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अबू सुफ़ियान सिर्फ कहा मुआविया, जिक्र किया मुआविया के, कहते हैं गंदगी ना फैलाओ हमारे इस मजलिस और महफिल में, क्यों हमारी महफिल को गंदा और आलूदा कर रहे हो। आगे आप देखें कि नीचे एक और जो बात उसने की अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हम्माम के हवाले से, काला उकैली, उकैली कहते हैं कि समीउत अली बिन अब्दुल्ला बिन मुबारक सनआनी, वो फिर आगे ज़ैद बिन मुबारक से कहते हैं, ज़ैद बिन मुबारक कहते हैं कद लज़िमा अब्दुर्रज़्ज़ाक, के काना ज़ैद बिन मुबारक कद लज़िमा अब्दुर्रज़्ज़ाक, अब्दुर्रज़्ज़ाक के साथ साथ ज़ैद बिन मुबारक रहा करता था। ज़ैद बिन मुबारक कौन है कि जो अब्दुर्रज़्ज़ाक के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता था। फ़ अक्सर अनहु, और बहुत सारी हदीस अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हम्माम से नकल की, सुम्मा खरा का कुतुबहू, फिर पकड़ के सब फाड़ डाली जो लिखा था अब्दुर्रज़्ज़ाक से। वलज़िमा मोहम्मद बिन सौर, और उसके बाद मोहम्मद बिन सौर से जुड़ गया। फ़कील लहू फिज़ालिका, पूछा गया ज़ैद बिन मुबारक से क्यों तुमने ये काम किया। उसने कहा, कुन्ना इंदा अब्दुर्रज़्ज़ाक, हम अब्दुर्रज़्ज़ाक के पास थे। फ़हद्दसना बिहदीस मामर अन ज़ोहरी अन मालिक बिन औस बिन हदसान, तो उसने हमारे सामने मामर के तरीक़े से ज़ोहरी से, और ज़ोहरी ने मालिक बिन औस बिन हदसान से एक तवील रवायत नकल की जो सही मुस्लिम में है, कि इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास खलीफा दुव्वम के पास चले गए और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके सही मुस्लिम के मुताबिक ये कहा कि ये शख्स जो है नऊज़ुबिल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि ये खाइन आसिम गादिर गुनागार, ये मीरास में मुझसे झगड़ा करता है। तो तब खलीफा दुव्वम ने उन्हें कहा कि ए अली और ए अब्बास, तुम दोनों मुझको और खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर के बारे में भी यही कहते थे कि गुनाहगार हैं, धोखेबाज हैं, ख़यानतगार हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ। तो वहाँ पे ये तवील हदीस है, आप सही मुस्लिम में इसे पढ़ें, उसका ये बात कर रहे हैं। कहते हैं कि यानी ज़ैद बिन मुबारक कहते हैं कि ये रवायत जब अब्दुर्रज़्ज़ाक ने मेरे सामने हमारे सामने पढ़ी, फ़लम्मा क़रा क़ौल उमर ले अली वल अब्बास, जब उमर बिन ख़त्ताब का ये कहना जो अली और अब्बास को उन्होंने कहा, फ़जीत अंता तत्लुब मीरास कमिन इब्ने अखीका, के इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास दोनों को मुखातब करके क्या कहा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने, कि तुम मेरे पास आए हो मीरास लेने अपने भाई के बेटे, यानी हज़रत अब्बास क्योंकि भाई हैं हज़रत अबू तालिब के, कहा कि अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, कहा अपने भतीजे की मीरास तुम तलब कर रहे हो और ये अली आया है अपनी जोजा की मीरास तलब करने, ए अब्बास तुम अपने भतीजे की मीरास तलब करने आए हो और अली अलैहिस्सलाम आए हैं अपनी जोजा की मीरास तलब करने। इतना कहा तो अब हाशिया ख़ुद लगाया अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हम्माम ने, क़ाल अब्दुर्रज़्ज़ाक उन्ज़ुरु इलल अनवक, इस अहमक और बेवकूफ़ की तरफ देखो कि वो ये कह रहा है कि तुम अपने भतीजे की मीरास लेने आए हो, वो ये नहीं कह रहा कि रसूल ने ये कहा है इस तरह से, यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को इशारा करके कहता है कि अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हम्माम, कि ये देखो उमर बिन ख़त्ताब की तरफ इशारा करके कि इस अहमक और बेवकूफ़ को देखो कि ये अब्बास को देखो क्या कह रहा है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कह रहा है कि अपने भतीजे की मीरास, जबकि ला यकूलु रसूलुल्लाह है, ये नहीं कह रहा कि अल्लाह के रसूल, भतीजा कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि अब्बास जो रसूलुल्लाह के मसलन चचा हैं, भतीजा कह रहा है रसूलुल्लाह को, इसके ऊपर एतराज़ किया कि ये भतीजा लफ्ज़ क्यों कह रहा है, यानी उमर बिन ख़त्ताब भतीजा क्यों अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हम्माम ने इस जगह पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को क्या कह दिया, अनवक, अहमक, बेवकूफ़। फिर कहते हैं फलम आऊद इलैही है वला अरवियान हो, ज़ैद बिन मुबारक कहते हैं मैंने तोबा की और कभी रवायतें नहीं लूँगा। ज़हबी का आप तबर्रा देखें अब्दुर्रज़्ज़ाक के ऊपर, क्योंकि अब्दुर्रज़्ज़ाक ने खलीफा दुव्वम पे किया, कुल तो हाज़ी अज़ीमतुन, ये तो बहुत बड़ी एक बात हो गई। मा फ़हिमा क़ाला अमीरुल मोमिनीन उमर, ये जो उसने अमीरुल मोमिनीन उमर से समझा है, ए वो शख्स फ़इन्नका या हाज़ा लौ सकत्त लकाना औला बिका, और तू चुप रहता तो बेहतर होता। उमर जो है वो बेहतर जानता है कि अमूमत और बनूवत के क्या अहकाम हैं, अगर क्या हक़ मुस्तफ़ा के बारे में उमर से कोई आलम तर शख्स कोई है,
फिर आगे वो कहते हैं अस्सवाब अन नकूल अन का, ए अब्दुल रज़ाक बिन हमाम तेरे बारे में हम समझते हैं कि ये कहना दुरुस्त है। उन्ज़ुरु इला हाज़ल अनवक, ये अहमक और नादान बेवकूफ़ अब्दुल रज़ाक बिन हमाम अल्फ़ाइल फ़ा अल्लाहु अन्हु कैफ़ यकूल अन उमर हाज़ा, ये कैसे उमर बिन ख़त्ताब के बारे में जसारत कर रहा है। फिर आखिर में कहते हैं क्योंकि अब मसला गड़बड़ हो रहा है कि कहीं उस वसाकत ही ना गिर जाए और फिर वो हदीसें जो फ़िक़्ह के बाब में आई हैं वो नाकिस होंगी। वबिकुल हालिन फ़नस्तग़फ़िरुल्लाह लना वल अब्दुल रज़्ज़ाक़, हम अपने लिए भी अल्लाह से दुआ करते हैं और अब्दुल रज़्ज़ाक़ के लिए भी मग़फ़रत तलब करते हैं। फ़इन्नहु मामूनुन अला हदीस रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की हदीसें बयान करने में अमीन है, सादिकुन सादिक है। यहाँ तक के बयान किया इब्ने मईन ने, वो भी बेचारा गमगीन रहा करता था, तो बाज़ ने कहा कि यार ये क्या हो गया, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीसें लेनी चाहिए या नहीं। इब्ने मईन बड़ा गमज़दा रहता है, यार ये क्या अजीब है बातें इस तरह की कर जाता है। हज़रत उमर पे भी एतराज़, माविया पे भी एतराज़। तो फिर वो कहने लगा माविया बिन मईन लो इरतद अब्दुल रज़्ज़ाक अनिल इस्लाम, अगर वो इस्लाम से मुर्तद भी हो जाए माँ तरकना हदीसा हो, हम उसकी हदीसें तरक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़दक हिबा दे दिया। यानी आप देखें कितना अजीब मेयार यहाँ पे पेश किया जा रहा है। बस यहाँ से हमें पता लगा इब्ने अबी दारिम बेचारे के साथ किस कदर ज़्यादती है। अगर हदीसें नकल की हों बुखारी और मुस्लिम ने और वो शिया हो और राफजी हो और तबर्रा करे, तब भी वो मुर्तद अनिल इस्लाम हो जाए, माँ तरकना हदीसा हुआ, हम हदीसें नहीं तर करेंगे। और इब्ने अबी दारिम जिसने तबर्रा नहीं किया, खामोश रहा, हाफिज़ है, लाखों हदीसें जानता है, हिबा की रवायत क्यों नकल कर दी? बस ये ज़ईफ़ है, राफजी है, नजिस है, खबीस है, वज़ा है। ये तोहमतें आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि ताहिरीन।